क्यों? कठोरता की बात तो वो कहता है कि जिसका मन प्रेम से सूना होता है। हम मधुर वाणी इसलिए बोलते हैं कि सीता जी आपका स्वरूप हमारे मन में बसा हुआ है, परंतु हमने ये सुना है कि जिस मनुष्य का विपरीत समय आता है वह अपने मन से कठोर बात बोलता है। ओहो, देखो अभी तुम्हारा राम के प्रति प्रेम है ना, इस कारण से मैं तुमको मारना नहीं चाहता हूँ। इसलिए नहीं मारना चाहता कि मारने से लाभ क्या है। देखो अब तुम झूठे बैराग्य की ओर मत चलो, तुम वास्तव में वध के योग्य हो कि एक राक्षस राज रावण, लंका नरेश रावण, उसका तुम शब्दों से अपमान कर रहे हो। आज तक रावण को ऐसे कठोर शब्दों को किसी ने नहीं कहा है, अतः रावण ऐसे कठोर शब्दों के सुनने का आदि नहीं है। ऐसे परुष वाक्य बोलोगे, कठोर वाक्य बोलोगे, तुम्हारा निश्चित रूप से वध होगा। सीता अपनी वाणी को संभाल करके बोलो। रावण ने जब ये बात सीता जी से कही तो सीता जी ने रावण की ओर क्रोध की दृष्टि से देखा और निर्भीकता से भी देखा कि क्या करोगे तुम, मेरा क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्राण लोगे, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते, प्राणों को तुम्हें स्वयं देने के लिए तैयार हो। रावण ने कहा, सीते हम तुमको 2 महीना का समय देते हैं, 2 महीने के अंदर या तो तुम हमें स्वीकार कर लेना, नहीं तो 2 महीने के बाद तुम जो है हमारे प्रातःकाल के कलेवे में पुरुष दी जाओगी। इस प्रकार से बहुत सी स्त्रियां यूं जो है रावण की तरफ देखने लगी। इधर ध्यान देना, हो थोड़ा ध्यान देना, ये देवताओं की कन्याएं, देवताओं गंधर्वों की कन्याएं, जो ऊंची ऊंची श्रेष्ठ कुल की कन्याएं थी ना, वो रावण के थोड़े पीछे खड़ी हो गई। पीछे खड़ी होकर के सीता की तरफ इशारा करने लगी, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा डर रहे हो, डराओ इसको, धमकाओ, ये कुछ नहीं कर सकता। देखो नेत्र ही नेत्रों के द्वारा और वक्त्र ही मुखों के द्वारा और ओष्ठ प्रकार ही और होठों के प्रकार, ऐसे ऐसे करके और बताया कि ठीक है तुम ऐसे डांटते रहो, फटकारते रहो, ऐसे इशारा किया। इन इशारों से सीता को एक बड़ा आश्वासन मिला। अब सीता ने देखा कि यहां भी मेरा कोई न कोई पक्ष लेने वाला तो है ही। अब जो है सीता ने उसको बड़े उत्साहित होकर के गर्वित वाणी में सुनाना चालू किया। नूनम नतीजन कश्चित अश्वा निश्रेयसी स्थित है, रावण अब मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें यहाँ कोई शिक्षा देने वाला नहीं है। अरे मुझे शिक्षा देने वाले यहाँ मिल गए, मूर्ख तेरे कोई शिक्षा देने वाला नहीं मिला। निवारयति यो न त्वाम कर्मणो अस्माद् विगर्हितम्, कर्मणो अस्माद् विगर्हितः, ऐसे निंदनीय कर्म से तुमको हटाने वाला कोई नहीं मिला लंका में, तुमको कोई सही बात कहने वाला ही नहीं है। एक धर्मात्मा की पत्नी को एक राक्षस अपनी पत्नी बनाना चाहता है, ये बिल्कुल स्पष्ट पाप है, ये कोई छिपा हुआ पाप नहीं है। इस स्पष्ट पाप का कोई विरोध करने का यहाँ किसी में सामर्थ्य नहीं। क्या सब बुजदिल है, सब मरे हृदय वाले हैं? तुम जानते नहीं हो, राम है वो हाथी के समान है और तुम एक खरगोश के समान हो। राम मनुष्य श्रेष्ठ है और तुम राक्षसाधम हो, मनुष्य श्रेष्ठ और राक्षसाधम। और राम के नेत्रों में स्नेह और कृपा है, तुम्हारे स्नेह तुम्हारे नेत्रों के अंदर क्रोध है, तुम्हारे अंदर अधर्म भरा पड़ा है। इसलिए अंश देशात्म रामस्य, मैं तो राम जी के सहारे से, राम जी के कंधे का सहारा चाहती हूँ, तुम हमारे सामने जो है कुछ भी नहीं हो। देख रावण, तेरे मन में आता होगा कि ये इतनी धर्मात्मा है तो मुझे भस्म क्यों नहीं कर दे, जैसे तू मुझे नहीं मार सकता ऐसे मैं भी एक धर्म के कारण से तुम्हें नहीं मार रही हूँ। क्यों मैं इसलिए नहीं मार रही हूँ कि एक तो तुम्हें मारने का काम राम के द्वारा दुनिया में श्रेष्ठ रहेगा, दूसरी बात यदि मैं अपनी तपस्या से तुझे मार दूं तो मेरी तपस्या क्षीण होगी। सती साध्वी स्त्रियां इस प्रकार से किसी को शाप देती नहीं है, स्वयं कष्ट पा लेती है पर वो शाप नहीं देती है। विधिस्तव वधार्थाय, ऐसा लगता है कि तेरे वध के लिए ही राम का जन्म हुआ है, तेरे वध के लिए ही दशरथ जी ने वरदान मांगा है, तेरे वध के लिए ही हम लोग वन में आए हैं, तेरे वध के लिए ही तूने मेरा हरण किया है, ये बात मुझे ठीक मालूम दे रही है, तेरे वध के लिए ही आई हूं मैं। सीता जी के कठोर शब्द सुने रावण ने, और रावण ने सुन करके आंख निकाली सीता की ओर, आंख निकाल करके, और वो बड़ा भयंकर मालूम दे रहा था उस समय, मानो कोई बरसात का काला काला मेघ हो, और जैसे कोई बड़ा भारी सर्प है जो यहाँ जो है प्रकट हुआ हो, जो कोई सिंह है कि जो पर्वत में से आया हो, लाल लाल फूलों की माला पहना हुआ, और भाई जिस प्रकार से अमृत के उत्पादन में मंदर पर्वत है, ऐसे ये रावण पर्वत के समान दिखाई दिया, और श्मशान चैत्य प्रतिमा है, और श्मशान का चैत्य के श्मशान चैत्य के समान हो। श्मशान चैत्य क्या होता है, हो कि देखो एक मसान होता है, मसान में कोई बड़ा आदमी मरता है ना, तो उस मसान को सजाते हैं, और जिसमें एक खाली जगह होती है उस मंदिर को सजाया जाता है, श्मशान के पास का मंदिर, उस मंदिर को सजाया जाता है और उसकी बड़ी शोभा बनाते हैं। कोई बड़ा बूढ़ा आदमी, प्रतिष्ठित आदमी, बड़ा आदमी चला जाए तो उस वहां पर शोभा करते हैं। शोभा करने का अर्थ क्या हुआ कि यही अर्थ हुआ कि भाई जो है वो वहां श्रृंगार किया, तो वो श्रृंगार किसी को भी अच्छा नहीं था, वो शोक का श्रृंगार है। ऐसे ही रावण का जितना भी श्रृंगार है वो श्मशान चैत्य के समान है। भूषितो भी भयंकर है, क्योंकि वो भूषित वावा भी बड़ा भयंकर लगता है। लोग देखते हैं, अरे आज इस श्मशान चैत्य को सजाया क्यों है, कोई उनकी बड़ा आदमी मर गया, तो वो कितना विभूषित होता है लेकिन भयंकर होता है। ऐसा वो रावण सीता की तरफ आंख निकालता हुआ बोलने लगा, सीते अब तुम्हारा विनाश आ गया है, अनयन अभिसंपन्नम अर्थहीनम अनुव्रते, तुम एक अर्थहीन व्यक्ति का पक्ष ले रहे हो, मैं तुम्हें भी नष्ट कर दूंगा और मैं राम को भी नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर के रावण ने जितनी वहां पर राक्षसियां थी, कोई एक कान वाली, कोई बिना कान वाली, कोई एक आंख वाली, कोई बिना आंख वाली, कोई लंबे कान वाली, जो भी वेत, उन सब राक्षसियों को रावण ने कहा, देखो राक्षसियों, तुम लोग मेरा वेतन भुगती हो, अर्थात मेरे द्वारा तुमको तनख्वाह मिलती है, तुमको ऐसा काम करना चाहिए जिससे महाराज रावण प्रसन्न हो, अतः आपको चाहिए कि आप सीता को मेरे वश में करो, और वश में करके जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचाओ, नहीं तो तुम इसका कलेवा करके खा जाओ। इस प्रकार से उनको समझाया और उनको अपनी तरफ से बात कही, और जाते जाते जो है परिष्वज्य दशक ग्रीवम इदम वचनम अवरी, वो धान्य मालिनी नाम की एक उसकी स्त्री थी रावण की, धान्य मालिनी ने कहा, अरे रावण आप इतने महान हो, त्रिलोकी को अपने वश में किए हुए हो, सब राक्षसों के राजा हो, एक मनुष्य की स्त्री पर आपका इतना क्या मन हुआ है, चलो मेरे कहने से ये भी बिचारी क्या है, इसको छोड़ छाड़ दो ना, आपको बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ धन मिला हुआ, स्त्रियां मिली हुई, पद मिला हुआ, बल मिला हुआ, बहुत बड़ी चीजें आपको मिली हुई है, छोड़ो आप इसको, इसको बिचारी को डरपोक को क्यों आप अपना बनाना चाहती हो, चलो बहुत है आप, आपके पास तो बहुत स्त्रियां हैं। ऐसा कहकर के रावण की बड़ी प्रशंसा की और रावण को वहां से लौटा दिया, और रावण वहां से अपने महल की ओर चला गया। रावण के चले जाने के बाद अब हनुमान जी महाराज फिर सोचते हैं कि हाँ अभी देखो क्या होता है। अब वो चारों तरफ से जो राक्षस लोग थे ना, वे राक्षस लोग जो है राक्षसियां वे सीता जी को डराती हैं। वे राक्षसियां बोलती हैं कि सीता जी आप इतने बड़े महान रावण की बात नहीं मानती हो, इसका बड़ा भारी कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। उनमें से एक जटा नाम की राक्षसी थी, वो एक जटा बोली, सीता तुमको पता नहीं है ये रावण प्रजापति नाम सन्नाम तु चतुर्थो यम प्रजापति मानसो ब्रह्मण पुत्र पुलस्त्य है, छह प्रजापतियों में चौथे प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य हुए थे, और पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा हुए, विश्रवा के बेटा कुबेर हुए, और कुबेर के ही भाई विश्रवा के ही बेटा ये रावण है, अतः इतने ऊंचे कुल वाले ब्रह्मा की वंश परंपरा में जो इतने बड़े राजा हुए इनको आप स्वीकार नहीं करती हो, क्या समझ के स्वीकार नहीं करती हो। हरि जटा ने कहा, अरे तुम्हारे जो नेत्र हैं ये हम अपने तीखे तीखे नाखूनों से खोद खोद करके निकाल लेंगे और निकाल करके हम नेत्रों को खा जाएंगे, क्या करोगे तुम? जब इतनी बात नहीं मानती तो क्या करोगे? तो विकटा ने कहा कि ऐसे नहीं मानेगी सखी, ऐसा करो कि इसको समझाओ, नहीं तो देखो हमारे ये शस्त्र, हमारा शस्त्र ले, तुम आंखों से इसको मत करो, इसको तो शस्त्र से धीरे 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 काटो, एक अंग काटो, फिर पूछो कि तुम रावण की बनोगी कि नहीं, फिर तो पास का अंग काटो, धीरे धीरे इसको काटो। दुर्मुखी ने कहा कि ए सीते, क्या तुमको पता नहीं है कि सूर्य भी इनके सामने कांपते रहते हैं, चंद्रमा भी इनसे डरते रहते हैं, तू निसंकोच चाय जैसे बोलती है, तेरे में कोई ज्यादा ताकत है क्या? तुम्हारे अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है, तुम तो केवल बकवादिनी होकर के बोलती हो, हमारे महाराज का अपमान करती हो, ये अच्छी बात नहीं है। राक्षसियों ने फिर कठोर शब्दों में कहा, अरे सीते क्या तुझे जंगलों में भटकना अच्छा लगता है? महाराज रावण का महल तुमको अच्छा नहीं लगता? क्या तुमको मनुष्य अच्छे लगते हैं? ये रावण जो राक्षस राज है ये तुमको अच्छा नहीं लगता? तुम्हारी बुद्धिहीनता तो सामने स्पष्ट आ रही है, एक राजा है एक रंक है, तुम राजा से क्यों नहीं प्रेम करती? एक उस जंगल में भटकने वाले से ऐसा क्या तुम्हारा मोह हो गया? जो राज्य से भ्रष्ट हो गया, बुद्धि से भ्रष्ट हो गया, और जो स्त्री से ही भ्रष्ट हो गया, अर्थात स्त्री भी अब उसके पास नहीं रही, ऐसे राम को लेकर तुम क्या करोगी? सीता बोले कि देखो तुम लोग जैसे बोलते हो, यहाँ मैं अकेली बैठी हूँ, मेरे साथ में कोई बोलने वाला नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा बोलती हो, और हे राक्षसियों तुम हमको खाओगी, इससे ज्यादा क्या करोगी? खाओ तो खा जाओ, मैं किसी भी प्रकार से रावण की स्त्री कभी नहीं हो सकती, क्योंकि राम मेरे पति है, और स्त्री के लिए पति होता है वही उसका गुरु होता है। देखो एक बात ध्यान में रखना, महाराज श्री बहुत बार बोलते थे, ये स्पष्ट साफ सीता के शब्दों में आ गया, लोग कहते हैं कि पति गुरु होता है, ये शास्त्र में कहां लिखा है? आप ये देख लेना, वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा हुआ है, और सीता जी बोलती है, इससे ज्यादा क्या होगा? पति जिसको गुरु बनाता है वो पत्नी का अपने आप ही गुरु हो गया, वैसे पत्नी को कभी भी अलग से पति से अतिरिक्त गुरु बनाना ही नहीं चाहिए, और यदि बनाते भी है तो पति गुरु है, और पति ने जिसको गुरु बनाया वो अपने आप गुरु हो गया, क्यों जो है पति के अतिरिक्त किसी और को गुरु बनाया जाए? साफ शब्दों में लिखा है, हो दीनोवा राज्य हीनोवा यो में भरता समय गुरु, चाहे मेरे स्वामी दीन हो चाहे राज्य से हीन हो, वो मेरे पति पति है और वो ही मेरे गुरु है, अतः आप हमको जो है उसकी पत्नी बनने के लिए मत बोलिए। हनुमान जी महाराज ये बात सब सुन लिए, हनुमान जी महाराज अब बहुत प्रसन्न हो गए। सीता वहां से रवाना हुई, सीता वहां से उस जगह से उठ गई, और उठ करके वहां से कांपती कांपती उन राक्षसों से डरती 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 उसी वृक्ष के नीचे आकर खड़ी हो गई जिसके ऊपर हनुमान जी महाराज विराजमान थे। अब हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, ओह सीता जी तो यहीं आ गई। सीता जी के पीछे पीछे वो राक्षसी भी आए, और वो राक्षसी आई, उनमें विंता नाम की राक्षसी थी, उसने कहा कि देखो या तो तुम रावण को अपना भर्ता मान लो, नहीं तो देखो तुम्हारे सुंदर अंग है ना, ये हमारे द्वारा काट दिए जाओगे और हमारे द्वारा तुम खा ली जाओगे। विकटा ने कहा, ए सखी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्यों? तुम अकेली मत खाओ, देखो इसका मांस तोल लेना है, और अपनी जितनी है ना सब तोल तोल करके इसका मांस सबको पाती आए, ऐसा अपने को मांस खाना है, ऐसे करके उसको डराने लगी। एक ने कहा कि नहीं देखो ऐसा मत करो, हम इसका कलेजा खाएंगे। एक ने कहा कि नहीं हम ये गर्दन का हिस्सा, ये सांस लेने का, ये हम ये खाएंगे। किसी ने कहा कि नहीं हम इसकी भुजा खा जाएंगे, ऐसे करके सब ने कहा। तब सीता को एक तरह से डराने की बात थी। उनमें शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी थी, वो राक्षसी नहीं दूसरी है ये, शूर्पणखा नाम की। उसने कहा कि देखो ज्यादा बातें मत बनाओ भाई, या तो तुम कुछ करके दिखाओ, तब तो देखो हम यहाँ बैठे ही, और ये तुम कुछ ऐसी बातें बनाती हो केवल डराने के लिए बोलती हो, तो उससे क्या फायदा, हम हमारे जाए भाई, कुछ मार मूर करके कुछ देव तो सही, हम यूं ही बैठे हैं, डराने से क्या होगा, हम आज मनुष्य का मांस खाएंगे, फिर हम जो है निकम्बला के क्षेत्र में जाएंगे। सीताजी बहुत डर गई। सीताजी ने कहा अरे न मानुषी राक्षसी, अरे सुनो मूर्खों, कभी भी कोई मनुष्य की स्त्री राक्षस की स्त्री हो नहीं सकती, खाना हो तो ये खा जाओ। इतना कहकर के सीताजी उस वृक्ष के वहां पर जाकर के एक टहनी को पकड़ ली, उसी अशोक वाटिका को टहनी को पकड़ करके, और खड़ी खड़ी सोचती है क्या करूं, अब राम तक कैसे समाचार जाए, लक्ष्मण तक कैसे समाचार जाए, मेरी सासू कौशल्या तक कैसे समाचार जाए। ओहो ये बात सही है कि बिना मांगे मौत भी नहीं मिलती, बिना समय पर मौत भी नहीं आती, मौत भी अपने समय पर आती है। अब क्या करूं, मैं समुद्र में डूबूं या यहाँ कहीं मैं उपाय कर लूं कि मैं मर जाऊं। वे मनुष्य बड़े धन्य हैं जो मेरे नाथ राम जी का दर्शन करते हैं। क्या करूं, मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं तो बड़ा अच्छा है। इस प्रकार से वो मरने का विचार करती है, और फिर मन में वो विचार करती है कि भाई ये राक्षस की आज्ञा से रावणेन प्रमथ्याम आनीता क्रोशती बलात् बलपूर्वक मैं यहाँ लाई गई हूँ, इसलिए ये राक्षसियां मुझे चाहे जैसे बोलते हैं। राम जी महाराज तो भाई बड़े दयालु हैं, सद्वृत्ति वाले हैं, इन्होंने देखो विराद को मारा, उन्होंने गीदराज के, देखो ये गीदराज मेरे बहुत काम आया, गीदराज मेरे काम आया, उसने बेचारे ने अपने प्राण भी मेरे लिए त्याग दिए, अब ऐसा मेरे लिए कौन है जो प्राण त्याग सके, अथवा नहीं तस्यार्थे धर्म कामस्य धीमतः, क्या करूं कि उस राम के लिए तो मेरी प्रीति बढ़ती चली जा रही है, और ये लोग मेरा विनाश करने पर तुले हुए हैं, इनके द्वारा मरने की अपेक्षा तो मैं स्वयं ही मर जाऊं। फिर त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, त्रिजटा ने कहा ए राक्षसियों सुनो जरा हमारी बात सुनो। क्या, अरे रात में मैंने एक बड़ा सुंदर सपना देखा है। आपने सपना देखा? हाँ, एक सुंदर पालकी है, उस पालकी के अंदर बड़ा अच्छा रथ जुता हुआ है, और उसके आगे हाथी चलता है, उसमें तो भाई विभीषण बैठा हुआ है, राम जी महाराज उस हाथी के ऊपर बैठे हुए, विभीषण रथ में बैठा हुआ है, और राम जी महाराज हाथी पर बैठे हुए हैं, अच्छे कपड़ा पहने हुए हैं, साथ में लक्ष्मण है, दोनों के बीच में सीता विराजमान है, और पुष्पक विमान में बैठ करके वे अयोध्या की ओर जा रहे हैं, ऐसा मैंने देखा है, और रावण को मैंने देखा है कि वो गधे पर चढ़ा हुआ फिरता है, उसका मुंह काला हो गया है, और वो गोबर के अंदर उल्टा मुंह किया हुआ पड़ा है, वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, उसको एक कालिका खींच रही है, अतः तुम हमारे कहने से एक काम करो कि तुम सीता जी की शरण में आ जाओ। अरे रावण का राज्य तो थोड़े ही दिन का है, विभीषण का राज्य आने वाला है, क्या सोच रहे हो, बंद करा, ठीक है, क्या सोच रहे हो, तुम तो सीता की शरण में आ जाओ, सीता बड़ी दयालु है। तो सारी की सारी राक्षसियां सीता जी के चरणों में गिर गई, और त्रिजटा से कहा कि त्रिजटा जी अब क्या करें, तो त्रिजटा ने एक बात कही कि सीता जी मेरा सपना सच्चा होकर के रहेगा, एक यहाँ बंदर आ गया है लंका में, और वो बंदर हमारी लंका को जला रहा है, ये बात भी मैंने देखी है, कुंभकर्ण मारा गया ये भी मैंने स्वप्न में देखा है, लंका जल करके राख हो जाएगी हमने देखा है। सब राक्षसियां सीता जी के चरणों में पड़ गई। सीता जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा यदि त्रिजटा का सपना सच्चा होगा तो आप सबको राम की कृपा निश्चित रूप से मिलेगी। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के उस प्रसंग में अपने लोग चल रहे हैं, जब हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए और उन्होंने अपने बुद्धि कौशल से
छोटा रूप बनाकर सीता की खूब खोज की और कहीं पर सीता नहीं मिली तो समस्त देवताओं की कृपा का आश्रय लेकर वे अशोक वाटिका में आकर एक वृक्ष पर बैठ गए। वहां से उन्होंने रावण के द्वारा सीता को धमकाया जाना, राक्षसियों के द्वारा सीता को धमकाया जाना, त्रिजटा के द्वारा सीता को सांत्वना देना और अपने स्वप्न की बात बताना, ये सब कथाएं, सब लीलाएं उन्होंने देखी है। वाल्मीकि रामायण करुण रस प्रधान है और उसमें सीता जी का जितना विलाप आ रहा है ऐसा ही भगवान राम का विलाप था, और जैसे भगवान राम का विलाप था ऐसे ही सीता जी का विलाप रहा। असल में वाल्मीकि जी महाराज हम लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि हमारे हृदय में एक विरह की भावना तो है ही, यदि विरही होने की हमारी प्रवृत्ति नहीं होती तो हम संसार के दुखों में कभी नहीं रोते, हम कभी दुख नहीं पाते। तो जब हम दुखी होते हैं तो हमारे उस दुख वाली प्रवृत्ति को स्वच्छ करके वाल्मीकि जी महाराज हमें भगवान के लिए विरही बनाने की प्रेरणा देते हैं कि तुम अपने जीवन की घटनाओं में क्या रो मनुष्यों, तुमको रोना पसंद है तो राम जी के विलाप में आकर रोने लगो, तुमको रोना अच्छा लगता हो तो सीता के साथ बैठकर विलाप करो। इस विलाप के करने से दो लाभ होगा, अंतःकरण की शुद्धि होगी, भगवान में प्रेम होगा और तुम्हारे विरह के अंदर एक नया निखार आएगा। परंतु यदि संसार के भोगों के पीछे पड़े होकर दुखी रहोगे तो इससे आत्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति ये तो आपकी अवरुद्ध होगी ही होगी, अंतःकरण बहुत पतन की तरफ चला जाएगा और इसका फल हमको जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। इसलिए वाल्मीकि जी महाराज ने बड़े विस्तार के साथ जहां राम का विलाप करना है वहां राम का विलाप कराया और जहां सीता को विलाप करना था वहां सीता का विलाप कराया। ये सब भगवान की, संतों की बड़ी विचित्र लीला है और वे महापुरुष और भगवत जन और भगवान वे हम लोगों को अनायास ही, जो कि हम संसार के काम धंधों में ऐसे बेसुध हो गए हैं कि भगवान क्या है, भगवान कौन है, भगवान के साथ क्या संबंध है, बहुत बड़ी जीवन में भूल कर रहे हैं, उस भूल को मिटाते हुए बड़ी सहजता में भगवान के साथ हमारा तादात्म्य करते हैं। भगवान की लीला कथा सुनने की बात कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे पतनमान युग के अंदर हमको भगवान की कथा मिले और वो भी वाल्मीकि रामायण जैसा दुर्लभ राम कथा सुनने का अवसर मिले और उसमें भी वाल्मीकि रामायण का चमत्कारी सुंदरकांड सुनने को मिले, तो ये कोई विशेष ही भगवान की या हनुमान जी महाराज की कृपा समझनी चाहिए। भगवान स्वयं इस कथा को सुनते हैं और भगवान भी भाई अब हनुमान जी से बड़ी अपेक्षा रख रहे हैं कि हनुमान को मैंने अपनी अंगूठी दी है, देखें हनुमान हमारा कितना काम करता है। तो आओ आप हम सभी अपने मन से अब एक बार अशोक वाटिका में जाते हैं और जिस वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं उसी वृक्ष के नीचे सीता जी भी बैठी हुई है और सीता जी को कई राक्षसियों ने घेर रखा है और त्रिजटा ने उन सबको रोका है और अंत में सीता जी ने त्रिजटा को आश्वासन दिया है कि हे त्रिजटा जी,
यदि आपके स्वप्न के अनुसार लंका का राज्य विभीषण को मिल जाए, यदि आपके स्वप्न के अनुसार भगवान श्री राम सफेद हाथी पर विराजमान होकर मेरे सहित और लक्ष्मण के सहित सवारी के साथ निकलते हो, पुष्पक विमान में विराजमान होकर वे भगवान यदि अयोध्या की तरफ चलते हो, तो मैं विभीषण जी को कहकर के ये जितनी राक्षसियां हैं इन सारी राक्षसियों के कुशल क्षेम के लिए बोल दूंगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उन राक्षसियों के इस प्रकार से धमकाने के बंद करने के बाद सीता जी ने मन में विचार किया कि भाई त्रिजटा का तो एक स्वप्न है, स्वप्न कभी सत्य होता है कभी नहीं भी होता है, और स्वप्न में त्रिजटा बोलती है कि यहाँ एक बंदर आया था, तो बंदर का तो स्वप्न में देखना भी अच्छा नहीं लगता, क्या बात है कुछ पता नहीं है। ये राक्षसियां अभी तो मुझे नहीं डराती हैं, पर ये रावण की सेविकाएं हैं, रावण के वेतन के ऊपर जीवित रहने वाली है, वो रावण की बात मानेगी, मेरा आश्वासन उनके कहां काम आएगा। इन राक्षसियों के सामने आज मैं घिरी हुई हूँ और ये राक्षसियां मुझे डांटती हैं, फटकारती हैं, राम के लिए चाहे जैसी बात कहती हैं, तुम्हारा पति तो मनुष्य शरीर वाला है, वो तुम्हारा क्या करेगा, वो तुम्हारे विरह में मर गया है, ऐसी ऐसी मेरे मन के विपरीत बात बोलती हैं। तो इन सब के बीच में तो मुझे अब मर जाना बड़ा अच्छा लगता है, परंतु ये संसार में उक्ति भी तो सही है ना कि मौत अपने समय पर ही आती है, कोई भी यदि मौत को समय के आगे पीछे करना चाहे तो संभव नहीं है। देखो मैं इस लंका में एक अकेली हूँ, यहाँ लंका में मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत दुखपूर्ण तालाब के अंदर पड़ी हुई डूब रही हूँ, जिसमें दुख ही दुख पानी बना हुआ है, मेरा हृदय किसी प्रकार से स्थिर नहीं हो रहा है, मेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता है। कहा जाता है कि स्त्रियों का हृदय तो बड़ा कोमल है, परंतु ये कोमलता शायद मेरे अतिरिक्त और स्त्रियों की हो सकती है, मेरे लिए नहीं है। ओह नैवास्ति नूनम मम दोषमत्र, इसमें मेरी कोई भाई दोष की बात नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वास्तव में मैं अपने पति को पति से बिछड़ाई गई हूँ और इस रावण के बस में आई हुई हूँ, पर एक काम कर सकती हूँ मैं कि मैं अपने मन के जो भाव है जो एक पति के लिए होने चाहिए वो भाव मैं रावण को नहीं दे सकती हूँ, जिस प्रकार से ब्राह्मण शूद्र को वेद की ऋचाएं नहीं पढ़ा सकता, ऐसे मैं अपने मन के भाव रावण को नहीं दे सकती हूँ। यदि राम जी यहाँ नहीं आएंगे तो मेरा सारा ये विलाप किसी काम का नहीं आएगा और ये राक्षस राज मेरे शरीर को काट देगा। ओहो ये तो मेरे लिए बड़े दुख की बात हो गई, राम जी मुझको भूल गए हैं, वो दोनों राजकुमार क्यों नहीं आए हैं। बद्धस्य वध्यस्य यथा निशान्ते राजोपरोधा दिवतस्करस्य, जिस प्रकार से कोई तस्कर होता है, तस्कर बद्ध भी होता है, उसको कैद खाने में डाल दिया जाता है, और वध्य भी होता है, वध्य भी होता है, वो मारने योग्य होता है, उसी प्रकार से मेरा जो दुख है वो दुख भी तो अब कैद करने योग्य है और दुख भी दूर करने योग्य है। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सौमित्र, हे सीते, मैं कितनी विपत्ति में पड़ी हुई हूँ आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है। वे दोनों परम वेगशाली राजपुत्र राम और लक्ष्मण कहाँ रहते होंगे इस बात की भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे कारण से कहाँ भटकते होंगे, मेरे कारण से वे कहाँ कहाँ किन किन के पास जाते होंगे पता नहीं है। मुझे क्या मालूम था कि ये मारीच मुझे लुप्त करने के लिए आया है, और मैंने बिना सोचे समझे राम जी को भेज दिया, लक्ष्मण जी को भेज दिया, और उसके पीछे आज मुझे उस लोभ के कारण से कितना बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। ओहो हे राम, आप तो सत्य प्रतिज्ञ हो, जिस बात के लिए आप बोलते उसको आप सच्चा करते हो। आपका मुख खिले हुए चंद्रमा के समान प्रसन्न रहता है, सारे जीवों को आप आनंदित देने वाले हो। मध्याम सम और आप ये नहीं सोच रहे हैं कि इन राक्षसों के द्वारा मैं अब मारी जाऊंगी, मारने से पहले पहले मैं कैसे सीता को बचाऊं, इस विषय में आपने विचार ही नहीं किया। आपके अंदर बड़े गुण हैं, मेरे अंदर भी बड़े गुण हैं, मेरे अंदर क्षमा है, मेरे अंदर त्याग भी है कि मैं पृथ्वी पर सोती हूँ। मैंने अनन्य भाव से आपकी उपासना की है। हे राम, मैंने पातिव्रत के धर्म का पालन किया है, परंतु ये सब धर्म कर्म आज मेरे लिए कोई काम नहीं आ रहे हैं। हे राम, यदि इस प्रकार से मुझ निरपराध स्त्री के धर्म काम नहीं आए तो लोगों में धर्म में स्थित रहने का भाव कैसे होगा, और कैसे लोग फिर अपने धर्म में आस्था रखेंगे। मेरा धर्म यदि व्यर्थ हो गया तो किस उपाय से अपने धर्म की रक्षा आप लोग देख सकते हैं। आपने तो पिता के आदेश से वन में जाकर अपने धर्म का पालन किया, और आप तो वापस अयोध्या चले जाओगे। उस समय में कई स्त्रियां आपके पास आएंगी विवाह करने के लिए, कई प्रस्ताव आएंगे। आप तो नया विवाह करके नई सीता ला सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो राम आप ही हो, मेरे लिए तो आपके अलावा कोई दूसरा राम है।